नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ नई दिल्ली में वार्ता की। इस बैठक के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया ने खेल, संस्कृति और रचनात्मक उद्योग के क्षेत्रों में सहयोग सहित 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसमें औद्योगिक सहयोग समिति की स्थापना तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र के समझौता ज्ञापन भी शामिल हैं। दोनों देशों ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता और भारत कोरिया डिजिटल सेतु के ढांचे को उन्नत बनाने संबंधी वार्ता को फिर शुरू करने को लेकर साझा घोषणा पत्र का आदान प्रदान किया। श्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के प्रति सम्मान दोनों देशों के मूल्यों में निहित है।
8 वर्ष बाद कोरिया के राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ हम दोनों देशों के डीएनए में है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि भारत विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उभरा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार समाप्त होने में केवल 2 दिन शेष हैं। राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं। उधर तमिलनाडु में भी प्रचार जोरों पर है। तेलुगु देशम पार्टी के नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए के लिए कोयम्बटूर में प्रचार किया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कई स्थानों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त योजनाओं की घोषणा पर रोक लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने वित्तीय आंकड़ों का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि ऐसी योजनाएं आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है। याचिका में कहा गया है कि सरकारें इन योजनाओं के लिए लगातार कर्ज ले रही हैं, इससे आने वाली पीढ़ियों पर वित्त बोझ पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक बस दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। अधिकारियों ने बताया है कि दुर्घटना राजनगर उधमपुर सड़क पर जल्लो गांव के निकट हुई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुर्घटना में जान गंवाने वालों के प्रति दुख व्यक्त किया है। जांच जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उधमपुर बस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने सऊदी अरब के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। ये पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त बनाने और प्रगाढ़ होते ऊर्जा सहयोग पर केंद्रित रही। ये यात्रा बदलते भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारत और सऊदी अरब के बीच लगातार बढ़ती कार्यनीतिक साझेदारी को दर्शाती है। रियाद में भारतीय दूतावास के एक वक्तव्य में कहा गया है कि इस चर्चा में द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं और परस्पर हित के अन्य मुद्दों सहित कई व्यापक मुद्दों को शामिल किया गया। ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे दौर की शांतिवार्ता से इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के ध्वज वाले जहाज को जब्त करने के बाद ईरान की नए दौर की वार्ता शुरू करने की कोई योजना नहीं है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि वे ईरान के साथ संभावित वार्ता के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान भेज रहे हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने बताया है कि वार्ता से इनकार करने की वजह अमेरिका की अत्यधिक मांगे, रुख में बार बार बदलाव और नौसेना नाकेबंदी है। एजेंसी ने नाकेबंदी को संघर्ष विराम की स्थितियों का उल्लंघन बताया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने भी होर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर दिया है और वाणिज्यिक जहाजों को स्पष्ट अनुमति लेने तथा गार्ड द्वारा स्वीकृत मार्ग अपनाने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।